Om Shanti. Good evening to everyone. A hearty welcome to Gyan Sarovar. आज ज्ञान सरोवर के इस पावन प्रांगण में आप सभी तीन दिन के लिए एक बहुत अच्छी यात्रा पर रहेंगे और उस यात्रा में आप स्वयं को एनरिच भी करेंगे, एम्पावर भी करेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे कि सचमुच जीवन के अंदर आपने आपके अंदर आईक्यू लेवल तो बहुत हाई है ही है। आप जिस फील्ड से हैं उसमें आईक्यू के आधार पर ही आप वहां पहुंचे हैं। ईक्यू लेवल भी होगा ऐसा मैं समझती हूं, क्योंकि तभी आप यहां पहुंचे हैं। अगर ईक्यू न हो तो वो यहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। लेकिन अब आगे जो एसक्यू को बढ़ाने की बात है, एसक्यू के लिए जो आप चाहते हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि बिना एसक्यू जीवन के अंदर प्रोफेशनली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि जो प्राप्त करनी होती है वह एसक्यू लेवल से ही प्राप्त हो सकती है। तो एसक्यू का भाव आज दुनिया के अंदर अनेक प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए हैं। आईक्यू को जानते हैं, ईक्यू को जानते हैं, एमक्यू को जानते हैं, क्यूक्यू को जानते हैं, लेकिन एसक्यू भावार्थ के जहां आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस एमक्यू इज इक्वल टू एसक्यू। अब आईक्यू ईक्यू समझ में आ गया। एमक्यू का मतलब, एमक्यू अर्थात मॉरल क्वेश्चन, जो हमारी मोरालिटी है उसका क्वेश्चन कितना है, क्योंकि वो मॉरल क्वेश्चन हमारा आएगा वैल्यूज को लेकर के, जितने मॉरल वैल्यूज हमारे जीवन के अंदर होंगे उसको लेकर के। तो आईक्यू प्लस ईक्यू प्लस एमक्यू इज इक्वल टू एसक्यू, ये पता चलता है। लेकिन आज जो चर्चा हम यहां करेंगे इस नमः शाम के समय, जैसे कहा कि आईक्यू लेवल आप सबका हाई है ही है, ईक्यू लेवल भी है, और स्पिरिचुअल क्वेश्चन एसक्यू, ये स्लाइड में आप कुछ गलती देख रहे हैं, कुछ गलती नजर आ रही है? क्या गलती नजर आ रही है? कुछ गलती नजर आ रही है? क्या गलती है? सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे नीचे है ना, स्पेलिंग मिस्टेक में कुछ हो लग रहा है आपको गलती से? स्पेलिंग मिस्टेक है कहीं? नहीं दिख रहा है? कॉन्ट्रास्ट क्लियर नहीं है ना, स्पेलिंग मिस्टेक में, इंटेलिजेंस में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? इंटेलिजेंस में क्या मिस्टेक है? आई आई रह गया है ना, आई कैपिटल हो गया है शायद, यहां आई कैपिटल हो गया है। और उसको अगर स्मॉल करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बस एक बिंदी ऊपर लगानी पड़ेगी तो आई छोटा हो जाएगा, है ना? प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आई बड़ा हो जाता है, है ना? आई बड़ा हो जाता है ना जीवन में, ईगो बढ़ जाता है। अब ये आई को छोटा करना है तो एक बिंदी खाली लगानी है। सो आर वी प्रिपेयर्ड लगाने के लिए इस बिंदी को? इस बिंदी को लगाने के लिए आर वी प्रिपेयर्ड? यस, इसी के लिए यहां आए हैं। और जब इसके लिए हम तैयार हैं तो बहुत सुंदर किसी ने कहा है, द विल टू विन इज इम्पॉर्टेंट बट द विल टू विन इज नॉट वर्थ अ पेनी इफ वी डोंट हैव द विल टू प्रिपेयर आवर सेल्फ। उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। और क्या तैयारी करनी है? क्योंकि हम एक ऐसी जीवन की यात्रा पर चल रहे हैं कि जिस जीवन की यात्रा में एक लेंदी वॉयज है, और अगर ये आई बड़ा होता रहा बीच बीच में तो शायद संबंधों में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, हमारे जीवन को के अंदर कई प्रकार की समस्याएं खड़ा करता रहेगा, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या है ये तो हम सभी जानते हैं कि इट्स द इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज, टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स बाय केयरफुल थॉट्स एंड टू एंगेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ रीजनिंग। ये आईक्यू है कि अलग अलग प्रकार से हम अपने आप के अंदर तर्क चलाते रहते हैं, अच्छी तरह से कोई चीज को प्लानिंग करके सोचते हैं, बड़े से बड़े आइडियाज को समझने का एक प्रयत्न करते रहते हैं। और 1904 में बिनेट और साइमन ने इसके लिए कई टेस्ट डेवलप किए हुए हैं। वो टेस्ट आज भी दुनिया के अंदर कई जगह पर किए जाते हैं, और उसी के आधार पर आज सारी डिस्कवरीज जितनी भी हुई है दुनिया के अंदर, ये सारी डिस्कवरीज का आधार क्या है? तो यही आईक्यू लेवल जब व्यक्ति का है, अलग अलग रूप से उसने कई प्रकार से विचारों को समझना चाहा और उन विचारों की गहराई में गए, उन विचारों को बहुत अच्छी तरह से समझते रहे, तो कई प्रकार के इन्वेंशंस कर लिए, डिस्कवरीज कर ली। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी एक सवाल रहता है, और वो सवाल है कि क्या आज मनुष्य इतनी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज करने के बाद भी जीवन में खुश है? क्या कहेंगे? जीवन में खुशी नहीं है। क्यों नहीं है खुशी? क्योंकि शायद जीवन में कुछ एक अधूरापन रह गया है हमारे व्यक्तित्व को डेवलप करने। एक बच्चे को हम चलना तो सिखा देते हैं, लेकिन जीवन में कैसे चलना चाहिए शायद ये सिखाना हम भूल गए हैं। कहां वो गलत होता है ये बताना हम भूल गए हैं उसको। इसीलिए आज जीवन में व्यक्ति अपने आप में खुश नहीं है। तो कैसे चलना चाहिए? एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आता है कि एक बार एक अनाथ बच्चा था, रास्ते पर जा रहा था कि अचानक किसी के साथ में उसकी टक्कर लगी, कोई व्हीकल से टक्कर लगी और वो दूर जाकर के गिरा, उसके पैर टूट गए। अनाथ बच्चा था, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, सोचा इस बच्चे को हॉस्पिटल तो पहुंचाया जाए। हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, किसी समाज सेवी संस्था वाले को कांटेक्ट किया गया कि भाई ये अनाथ बच्चा है, उसको लगा है उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना खर्चा आएगा। वो समाज सेवी वालों ने उसका सारा खर्चा उठाने के लिए जो उन्होंने ट्रस्ट बनाया था उसमें से पैसे दिए और उसका ऑपरेशन कराया, और वह बच्चा ठीक हो गया। काफी सालों के बाद वही समाज सेवी वाले जो व्यक्ति थे जिसने उसका ऑपरेशन करवाया था, वो जेल विजिट करने गए। तो जब जेल में गए तो एक आदमी उनके सामने आया और हाथ जोड़ करके कहता है, सेठ जी आपने मुझे पहचाना? सेठ जी उसको देखते रहे, पहचाना तो नहीं जा रहा था, कौन है पता नहीं। तब वो आदमी कहता है कि मैं वही बच्चा हूं जिसका इतने सालों पहले आपने पैर फ्रैक्चर हो गया था तो उसका ऑपरेशन करवाया था। आपने मुझे चलने के काबिल तो कर दिया था लेकिन जीवन में मुझे कैसे चलना चाहिए था ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं था, इसलिए आज मैं यहां पहुंच गया। प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा जाता है कि कई अच्छे घर के बच्चे भी, चलो वो तो अनाथ था, किसी ने उसको सिखाया नहीं, लेकिन आज जब स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं हम लोग यही बातों को सिखाने के लिए, तो कई बच्चे हमारे सामने आते हैं, अच्छे घर के बच्चे होते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे भी आजकल ड्रग्स में या अनेक प्रकार के ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब माँ बाप को पता चलता है उनको बहुत रोकने का प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन उस समय वो बच्चे यही कह देते, बचपन से तो आपने कभी हमें समय दिया नहीं और आज आपको हमारी याद आ गई, यही कहते हैं। भावार्थ ये कि जीवन में कैसे चलना चाहिए ये सिखाया नहीं गया, इसलिए आईक्यू लेवल हाई होने के बावजूद भी वो अच्छे घर के बच्चे किस तरह अपने आईक्यू को यूज कर रहे हैं। आज जितने भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं कौन कर रहा है? हाई आईक्यू वाले लोग हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, जो किस प्रकार से कंप्यूटर्स की या जो उनके पास नॉलेज है उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, कितने प्रकार के साइबर क्राइम्स, अनेक प्रकार के साइबर क्राइम्स में जुड़े हुए हैं। इसी तरह इमोशनल क्वोशन को भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इमोशनल क्वोशन 1990 में डैनियल गोलमैन ने बताया, उसको डिफाइन किया कि किस तरह इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर्स एंड अदर्स फीलिंग्स, जो खुद की और दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना सिखाता है, और साथ ही साथ इट गिव्स एम्पैथी मोटिवेशन कंपैशन एंड एन एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड स्किलफुली टू प्लेजर एंड पेन। कैसे भी प्रकार की समस्याएं समय आए लेकिन उसमें कैसे चलना चाहिए, उस सीन को जीवन के अंदर किस तरह से लेना चाहिए, कैसे अपनी मानसिकता बनानी है, कैसी अपनी भावनाओं को बनाना है, ये सिखाता है। तो ये एबिलिटी जिसके पास है उसको कहते हैं कि हाई ईक्यू वाले लोग हैं। और देखा गया है कि दुनिया के अंदर अधिक सक्सेसफुल वही होते हैं कि आईक्यू से भी ज्यादा उनका ईक्यू लेवल होता है, वो हाई सक्सेसफुल स्थिति में आ जाते हैं। पीपल हु मैनेज सक्सेसफुल बिजनेस, बिजनेस में अगर देखा जाए तो पीपल हु हैव मैनेज सक्सेसफुल बिजनेस डोंट नेसेसरीली हैव हाई आईक्यू, लेकिन क्योंकि वो अनेकों के साथ रिश्ता ऐसा बना देता है तो रिश्तों को जैसे बनाता है तो उसी हिसाब से वो आगे बढ़ता जाता है जीवन के अंदर। तो इसीलिए कहा कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ऐसे कई इंडस्ट्रियलिस्ट को हम देखते हैं शायद 12वीं तक भी पास नहीं हुए हैं, लेकिन 12वीं तक पढ़ाई का सर्टिफिकेट न होने के बाद भी आज इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं, और उसका कारण यही है शायद कि उन्होंने रिश्तों को मेंटेन करने की आर्ट है, वो एबिलिटी है, और इसीलिए हाईली सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में। दूसरे देखा गया कि विलियम सिंड्रोम माना लो आईक्यू बट ऑफन डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्शनल म्यूजिकल टैलेंट्स। जितने भी आज म्यूजिशियंस हैं दुनिया के अंदर, कई उसमें ऐसे पॉपुलर हो गए हैं, सितार वादक है या फ्लूट बजाने वाले ऐसे कई है दुनिया के अंदर, पियानिस्ट जो है वो सब हाईली सक्सेसफुल हो गए, लोग बड़े गर्व से उनको देखते हैं, नाम लेते हैं, क्योंकि भले आईक्यू लेवल उनका बहुत लो रहा, पढ़ाई में शायद वो इतने हाई मार्क्स से पास नहीं हुए, लेकिन फिर भी आज दुनिया में उन्होंने नाम कमाया है क्योंकि उनका ईक्यू लेवल हाई है। इसी तरह पीपल ऑफ हाई ईक्यू आर कंफर्टेबल विद देमसेल्व्स, आउटगोइंग, हैप्पी एंड हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। आईक्यू लेवल में शायद अधिकतर ईगो क्लैश ज्यादा होता है और इसीलिए कहा जाता है पीपल आर यूजुअली हायर्ड फॉर देयर आईक्यू बट फायर्ड किस लिए, लैक ऑफ ईक्यू। जब ईक्यू नहीं है, लोगों के साथ उनका टकराव होता रहता है, मतभेद होता रहता है, ईगो क्लैश होता रहता है, कई प्रॉब्लम्स के खड़ा करने के निमित्त बन जाते हैं। तो भले हाई आईक्यू है लेकिन ईक्यू लेवल इतना लो होने के कारण उनको फायर कर दिया जाता है और फिर वो देखा जाता कि वो अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे लोग अधिकतर मेंटली इम्बैलेंस भी हो जाते हैं कई बार और कई अलग प्रकार की प्रवृत्ति के अंदर वो अपने आप को जोड़ लेते हैं। कई लोगों को ऐसे अटैक्स आते हैं, चाहे सिज़ोफ्रेनिक अटैक्स है, चाहे कई प्रकार के मेंटल इम्बैलेंस, केमिकल इम्बैलेंस उनके अंदर हो जाता है और उस कारण से कई प्रकार से नेगेटिव और दूसरों के लिए भी खतरा, उनका इतना इंटेलेक्चुअल प्लानिंग चलता है और उस इंटेलेक्चुअल प्लानिंग को देख करके विश्वास नहीं होता है कि ये व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। तो इसीलिए देखा गया कि आईक्यू से भी आज दुनिया के अंदर ईक्यू लेवल जिसका हाई है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन अब समय आ गया है कि बदल रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अ हायर इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। डाना जोहर और एयन मार्शल एज अ रिजल्ट ऑफ देयर पायनियर वर्क हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। उससे ऊपर कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं। एंड द लेवल ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कैन ऑल्सो बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस एज एसक्यू। This is the intelligence used to solve problems of meaning and values. जिसके अंदर अर्थ समाया हुआ है, ऐसे अर्थ वाले जो बातें हैं, प्रश्न है, समस्याएं हैं, उनको सुलझाने के लिए जिसका एसक्यू लेवल हाई है, तो वो सबके बीच में होने के बावजूद भी उस समस्या को बहुत सुंदर तरीके से सुलझाते हैं। लेकिन देखा गया कि द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ एसक्यू डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम आईक्यू एंड ईक्यू। आईक्यू प्राइमरली सॉल्व्स लॉजिकल प्रॉब्लम्स, 1+1 या लॉजिकली हर बात को समझने का प्रयत्न करते। ईक्यू अलाउज अस टू जज द सिचुएशन वी आर इन एंड बिहेव प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली, कि कैसे बिहेव करना है। चलो कोई भी सिचुएशन है उसमें हम बिहेव कैसे करें उसको जज करने के लिए हमें ताकत देता है। बट एसक्यू अलाउज अस टू आस्क इफ वी वांट टू बी इन दैट सिचुएशन इन द फर्स्ट प्लेस। उस जगह पर रहना जरूरी है, सारी एनर्जी खर्च करने के बाद हमें महसूस हो कि टाइम वेस्ट किया हमने। तो टाइम वेस्ट किया ये जो समझ में आता है उस समय, भावार्थ ये कि एसक्यू हमें पहले से ही ये कहता है क्या जरूरी है यहां हमारा खड़ा रहना, या ऐसे लोगों के बीच में अगर अपनी एनर्जी खर्च करना जो सुनने वाले भी नहीं है, समझने वाले भी नहीं है, उसके पीछे अपनी एनर्जी को खर्च कैसे कर सकते हैं। भावार्थ ये आईक्यू एंड ईक्यू आर सेल्फिश ओरिएंटेड एंड इट रिलेट्स टू द कैपिटल आई, बट एसक्यू इज प्योर इंटेलिजेंस विदाउट एनी लिमिटेशन। कोई लिमिटेशन नहीं है उसमें, एक बहुत इन्फिनिट पावर है उनके पास और उस इन्फिनिट पावर से उसको वो सॉल्व कर देते हैं। लेकिन उसके लिए कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एसक्यू प्रैक्टिकल देखा जाए तो पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस। हम अपनी वास्तविकता को अच्छी तरह समझे, एक जागृति लाए अपने अंदर। किस बात की जागृति? एक बहुत सुंदर कहानी मुझे याद आती है। एक बार एक गुरुजी थे और उसका एक शिष्य था। गुरुजी को विचार आया कि मैं हिमालय पर जाकर के और अधिक तपस्या करना चाहता हूं, तो उसने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि मैं परसों सुबह सुबह निकल जाऊंगा हिमालय इसके लिए, और मैं 2-3 महीना वहां रहूंगा, अपनी तपस्या करूंगा और फिर वापस आऊंगा, तब तक तुम आश्रम की संभाल करो। तो शिष्य ने कहा ठीक है। गुरुजी ने कहा कल का दिन मैं हूं सारा दिन, अगर कोई बात आप पूछना चाहते हो मुझे तो पूछ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि मेरा कल का दिन जो है मौन का दिन है। फिर भी अगर आप पूछेंगे तो मैं लिख करके आपको जवाब दे दूंगा। दोनों ने, शिष्य ने कहा ठीक है, गुरुजी ने भी कहा अच्छा। रात में सो गए। दूसरे दिन जब सुबह उठे तो शिष्य के मन में विचार आने लगा कि जब गुरुजी नहीं होंगे तो मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा, मैं जाकर के गुरुजी से सलाह ले लेता। तो वो गया गुरुजी के पास और कहा गुरुजी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। कहा बोलिए। इशारे से उन्होंने कहा। तो शिष्य ने कहा आप मुझे खाली इतना बता दो कि आपके एब्सेंस में मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा आपके पीछे, ताकि मेरे से कोई गड़बड़ ना हो। तो गुरुजी का मौन था। उन्होंने कागज और कलम उठाई और उस कागज पर एक शब्द लिख दिया, अवेयरनेस, जागृति, और शिष्य को दे दिया। शिष्य ने जब पढ़ा, अवेयरनेस, दैट्स ऑल, बहुत इजी है ये तो। ये सोचते हुए कुटिया से बाहर आया, बार बार उस कागज को देखता रहा कि गुरुजी ने खाली एक ही शब्द लिखा, अवेयरनेस, बस। आखिर भाव क्या होगा गुरुजी का? कुछ आगे कुछ पीछे भी लिखा नहीं, कुछ इलैबोरेट भी नहीं किया इस शब्द को। काफी देर सोचता रहा। सोचने के बाद वो फिर गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहता है कि गुरुजी कुछ आगे पीछे इलैबोरेट करो आप ये शब्द को। गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, एक शब्द आगे जोड़ दिया, एक शब्द पीछे जोड़ दिया। आगे जो शब्द जोड़ा वो भी अवेयरनेस था, पीछे जो शब्द जोड़ा वो भी अवेयरनेस था। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। शिष्य को जब दिया तो शिष्य ने सोचा बस अवेयरनेस मुझे रखनी है, इस एक बात का ध्यान रखना है, यही कहना चाहते हैं। ये तो इजी है, सिंपल है। करके कुटिया से बाहर निकला, बार बार उस कागज को देखे, बार बार उसका विचार चले और कंफ्यूज होता रहे कि आखिर गुरुजी कहना क्या चाहते हैं। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज इक्वल टू व्हाट? कुछ तो बताएं, किस बात की अवेयरनेस? काफी देर सोचते रहने के बाद फिर से गुरुजी के पास गया। गुरुजी कम से कम एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज इक्वल टू व्हाट? गुरुजी ने फिर वो कागज लिया, फिर वहां लिख दिया एक शब्द, अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस इज इक्वल टू अवेयरनेस। मैसेज शायद बहुत सिंपल था लेकिन उसमें बहुत गहराई समाई हुई थी। और गहराई क्या थी कि किस बात में अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए। शिष्य को कहना चाहते थे कि तुम जो बोल रहे हैं, तेरे मुख से जो शब्द निकलेगा, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दोज वर्ड्स ऑल्सो, कि तुम्हारे शब्द किसी को दुख तो नहीं दे रहा है। तुम जिस तरह से बिहेव कर रहा है, तुम्हारा बिहेवियर किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा है। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली अवेयर ऑफ व्हाट यू थिंक, व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू बिहेव। हर स्तर पर यू हैव टू हैव द अवेयरनेस। इसीलिए कहा शब्द एक था, लेकिन उसमें इतनी गहराई समाई हुई थी। और शायद हर वो व्यक्ति जो एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को संभाल रहा है जीवन के अंदर, उसको हर वक्त अवेयरनेस अपने ऊपर रखनी पड़ती है, नहीं तो एक छोटी सी गलती उसको किस तरह कैसे प्रॉब्लम्स में पहुंचा देती है। और उसके बाद वो पश्चाताप करता है, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा बोलूंगा तो ऐसा उसका रिएक्शन होगा, ये होगा, ऐसा होगा। कितनी बातें फिर पश्चाताप में रिग्रेट करना पड़ता है। भावार्थ ये सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मोटिवेशन। ये दुनिया ऐसी है, कोई किसी को मोटिवेट करने वाला नहीं है, लेकिन शायद हमें बचपन से ये आदत पड़ी हुई है कि जब भी हम छोटे थे, स्कूल में फर्स्ट लाए, याद करो उस दिन को जब पहली बार आपने स्कूल में फर्स्ट लाया और घर जाकर के रिजल्ट बताया, आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी शाबाशी दी और आपका मोटिवेशन बढ़ गया, पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि बढ़ गई। पढ़ते रहे, फर्स्ट लाते रहे, आगे बढ़ते रहे, हर बार आपको शाबाशी मिली, वाह बेटा, शाबाश बेटा, ऐसे शब्द सुनते रहे आप और ये सुनने के आदती हो गए। लेकिन जब कार्यक्षेत्र पर पहली बार कदम रखा और आपने अच्छे से अच्छा किया परफॉर्मेंस, लेकिन कंपटीशन की वर्ल्ड है, कंपटीशन की दुनिया है, आपने इतना अच्छा कार्य किया और उसके बाद भी आपको किसी ने पैट नहीं किया, शाबाश ये नहीं कहा, उस वक्त क्या होता है? तो इसीलिए ये दुनिया में हमें याद रहे, कंपटीशन की दुनिया में कोई किसी को मोटिवेट करने वाला नहीं है। और ही अगर कोई कह रहा होगा तो 10 नुक्स निकाल करके दिखाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चन के लिए पहला कंपोनेंट एक तो सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मोटिवेशन। कोई किसको मोटिवेट नहीं कर सकता, हमें खुद अपने आप को करना होगा। दूसरा कंपोनेंट है इमोशनल मैनेजमेंट। कभी कभी हम बहुत भावुक भी हो जाते हैं, कई ऐसे जीवन में दृश्य आते हैं हमारे सामने और वो दृश्य देख करके हम भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन वहां हमें अपने आप को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तीसरा कंपोनेंट है रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप, है ना, रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एसक्यू का। बहुत सुंदर उदाहरण याद आता है मुझे कि एक बार एक पति अपने कार्य से घर में आया तो देखा सारा घर ऐसा बिखरा पड़ा है। रोज जब आता है तो एकदम स्पिक एंड स्पैन, एकदम क्लीन मिलता है घर, लेकिन उस दिन जब घर आया तो हर चीज बिखरी पड़ी थी सारे घर में। तो उसने आते ही जैसे घर का सारा हुलिया देखा, पत्नी को देखा तो पत्नी टीवी देख रही थी, हाथ में पॉपकॉर्न का वो था पैकेट और चाय साथ में रखी हुई थी और टीवी देख रही थी। पति ने सोचा कि आज क्या बात है, घर ऐसा बिखरा पड़ा है और वो टीवी देख रही है, जो कभी नहीं होता, मैं आता हूं और टीवी नहीं देख रही होती है, आज टीवी देख रही है। तो उसने स्वाभाविक से पूछ लिया क्या हुआ, तो पत्नी ने कहा कुछ नहीं और वो वहां से उठी भी नहीं, नहीं तो हमेशा आगे आकर के उनका सामान हाथ में से लेकर के चाय बनाए, ये बनाए, क्या चाहिए पूछती थी, उस दिन उठी भी नहीं। साहब किचन में गए, रात के बर्तन भी ऐसे बिखरे पड़े हैं, कुछ खाना पकाया भी नहीं है और किचन इतना गंदा पड़ा है। तो उसने फिर बाहर आके पूछा क्या बात है, तो पत्नी ने कहा कुछ नहीं। बेडरूम में गए तो बेडरूम में बेड्स भी नहीं बने हैं, सारा कपड़े ऐसे बिखरे पड़े हैं, और आश्चर्य हुआ ये क्या हो गया। वो फिर से बाहर आकर पूछता है, आखिर क्या हुआ है तुम्हें। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, रोज आप घर आकर के एक ही बात कहते हो, तो सारा दिन करती क्या है, तो सारा दिन करती क्या है। मैंने आज कुछ नहीं किया, सुबह से लेकर मैंने कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि ये घर की हालत क्या है और रोज मैं क्या करती हूं। शायद कई बार हमारे ये एक शब्द से भी हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। इसीलिए कहा, रिकॉग्नाइजिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स एंड मैनेजिंग आवर रिलेशनशिप। तू करती क्या है, तू करती क्या है, तू करती क्या है, काम क्या होता है तुमको सारा दिन। जब एक दिन भी वो नहीं होता है तो घर का सारा हाल कैसा होता है हम सब देखते हैं। तो इसीलिए दूसरों की भावनाओं को भी एप्रिशिएट करो, या उसको कहां एप्रिशिएट करना है तो वहां आप चूको नहीं। चौथा कंपोनेंट एसक्यू के लिए यही है कि जहां किसी ने कोई अच्छाई आपके साथ में व्यवहार में दिखाई तो आप उसको एप्रिशिएट अवश्य करिए। वो छोटा सा एप्रिसिएशन का शब्द भी कभी कभी बहुत कुछ कर देता है, बहुत कुछ कह देता है। एक बच्चे को हम हर रोज कोई चॉकलेट देता है, कहेंगे थैंक यू बोलो, अंकल को थैंक यू बोलो, आंटी को थैंक यू बोलो, और वो बोलता है, उसको ये मैनर्स लगता है कि मेरे मम्मी पापा अच्छे मैनर्स सिखाते हैं। लेकिन जब पिता घर में आते हैं थके हुए होते हैं, और वो बच्चे को लगता है कि मैं अपने डैडी के लिए एक पानी का ग्लास लेके जाता हूं, और वो इतना उत्साह में आकर के पानी का ग्लास भर करके आपको लेकर के देता है, आप इतने थके हुए हैं और वहीं उसके किताबें पड़ी हुई है, आप उसको और ही कह देते ये क्या कर रहा है तुम, सारा घर तुमने ये कर दिया, ये कैसा है तुम्हारा। वो वहां पानी लेके खड़ा है, आपको पानी दिया, आपने पानी पिया, वापस ट्रे में रखा, वो इंतजार करता है कि अभी वो भी मुझे थैंक यू कहे ना। रोज मेरे से बुलवाते रहते हैं थैंक यू करो, थैंक यू करो, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ लिया, कुछ भी थैंक यू करो ना? फिर उसके बाद कोई अंकल आते हैं घर में और कुछ देते हैं, आप उस बच्चे को कहो बेटा थैंक यू करो, करेगा? करेगा? वो सोचता है जब मैंने कुछ अच्छा काम किया मुझे तो थैंक यू मिली नहीं, अब मैं क्यों थैंक यू करूं। आप 10 बार उस बच्चे को कहते हुए थक जाएंगे बेटा थैंक यू करो ना, थैंक यू करो, वो नहीं बोलता है। और न बोलने का कारण क्या है मालूम नहीं हमें शायद, लेकिन वो एहसास जरूर दिला देता है हमें। एहसास कभी न भी हो लेकिन उसके बाद आपको सबके सामने यही कहना पड़ता है बड़ा जिद्दी हो गया है आजकल, नहीं तो हमेशा थैंक यू बोलता है। लेकिन न बोलने का कारण शायद कहीं हम ही तो नहीं है। तो एक शब्द अगर उस बच्चे ने पानी का ग्लास भी ला करके दिया, आपने उसको थैंक यू कह दिया, तो शायद वो इतना मोटिवेट हो जाता है। उसके अंदर जो संस्कार आप डालना चाहते हैं एप्रिसिएशन के, वो अच्छी तरह से वो उसको इंकल्केट कर लेता है। तो इसीलिए कहा ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, लेकिन शायद जीवन में संबंधों को निभाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। उसके साथ ही अगर देखा जाए कि कैसे करेंगे ये सब, तो अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट शब्द को अलग करें, मैन अ जेम है ना, मैन इज अ जेम, लेकिन कब, जब ENT ठीक हो उसका, तब ईएनटी माना, ईएनटी माना, ये ईएनटी की बात नहीं है। ये ईएनटी में तो आपने शायद डॉक्टरेट कर लिया, डिग्री प्राप्त कर लिया आपने, लेकिन ईएनटी का मतलब है, ई स्टैंड्स फॉर एनलाइटनमेंट। मैन इज अ जेम व्हेन ही इज एनलाइटन्ड, व्हेन इज नेचर, उसका जो नेचर है उस नेचर के अंदर कुछ वैल्यूज हो। व्हेन देयर इज विजडम, प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर, जो गुण है वो जब गुण आ जाते हैं उसके अंदर, और तब उसके संस्कारों में एक परिवर्तन आने लगता है, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन हिज संस्कार। तो मैन इज अ जेम, स्पिरिचुअल क्वोशन किसको कहा जाता है, उस स्पिरिचुअल क्वोशन से ही व्यक्ति बिकम्स अ जेम। परंतु कब, जब ईएनटी सही हो, तब एनलाइटनमेंट हो, नेचर को उसने डिविनाइज किया हो, वैल्यूज से उसको सजाया हो, और तब जाकर के उसके संस्कारों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ही उसको वो जेम बना देता है। तो इसीलिए वही स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। लेकिन बहुत सुंदर किसी ने कहा है, हाई स्पिरिचुअल ट्रुथ्स आर टू बी एक्सपीरियंस्ड, उसको अनुभव करना है। We may talk and reason all our lives, but cannot understand a word of truth unless we experience it ourselves. इसीलिए शायद महात्मा गांधी ने अपनी किताब लिखी है Experiments with Truth, कि जो सत्यता के साथ उसके प्रयोग किए हैं। जीवन में हमारे पास विजडम काफी हो सकती है, हम बहुत कुछ रीजन्स बता सकते हैं, दे सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं आईक्यू के आधार पर, लेकिन एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअली एनलाइटन व्यक्ति जो होता है वो एक्सपीरियंस करना जानता है। और एक्सपीरियंस कैसे होता है जीवन के अंदर, साइंस में आपने हमेशा एक तरफ थियरी, एक तरफ प्रैक्टिकल, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके साथ साथ रहे, थियरी भी प्रैक्टिकल्स भी। मार्क्स ज्यादा किसमें मिले, मार्क्स ज्यादा किसमें मिले, थियरी में या प्रैक्टिकल्स में? प्रैक्टिकल्स में, यही आंसर है। जीवन के अंदर हमारे पास बहुत सी ज्ञान की बातें हैं, बहुत विजडम हो, लेकिन जब तक उसको खुद एक्सपेरिमेंट न करो अपने जीवन के अंदर, प्रैक्टिकली अप्लाई करके न देखे, तब तक हम शायद आर्ग्यू कर सकेंगे, लेकिन हमें अनुभव नहीं है। और अनुभवी व्यक्ति ही हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ता है, सफल होता है। इसीलिए तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। कवि भी जहां नहीं पहुंच सकता, रवि भी जहां नहीं पहुंच सकता, वहां पहुंचता है अनुभवी, उसके अनुभव के खजाने के कारण। और अनुभव उसको कैसे मिला, एक्सपेरिमेंट्स जब किए तो एक्सपीरियंसेस प्राप्त हुए, रिजल्ट्स मिले उसको, और वो रिजल्ट्स ने उसको एक्सपीरियंस्ड बनाया, अनुभवी बनाया। तो इसीलिए प्रैक्टिकल्स लाइफ के अंदर भी बहुत जरूरी है। बच्चे को हम कई बार एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन क्या वही चीज मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली की है? नहीं की है तो कल वही बच्चा हमें अपने मुंह पर कहने में देरी नहीं करता है ना? इसीलिए उसको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज वी आर एसेंशियली स्पिरिचुअल बीइंग्स trying to have human experience by asking certain fundamental questions. और वो questions क्या है, सदियों से एक सवाल है हमारे सामने, और वो सवाल है who am I? अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। who am I? हम कौन है? where am I going? जीवन में हम कहां जा रहे हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू अदर्स मीन टू मी, दूसरे का संबंध मेरे साथ क्या है। ये तीन सवाल, ये बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी है जो हमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस प्रदान करते हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स ट्राइंग टू हैव ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन माना वैल्यूज, जो गुण है, ह्यूमन वैल्यूज है, उसको जीवन के अंदर जब ले आते हैं तब कहीं ना कहीं ये प्रश्न का जवाब हमें अंदर से प्राप्त होने लगते हैं। और उसके लिए जैसे कहा कि ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन आज की दुनिया में किसी ने सही कहा, वी आर मोर ऑफ ह्यूमन डूइंग्स देन ह्यूमन बीइंग्स, इज़न्ट इट? वी आर मोर ऑफ ह्यूमन डूइंग्स देन ह्यूमन बीइंग्स, वी कैन नॉट जस्ट बी। और आवश्यकता है हमें बनने की, सिर्फ कार्य करने की नहीं, बनने की जरूरत है। और वो तब होगा जब ह्यूमस और सोल, सॉइल प्लस सोल, व्हेन दे गेट टुगेदर, देन वी बिकम अ ह्यूमन बीइंग। बीइंग मतलब आत्मा, ह्यूमन मतलब शरीर। शरीर और आत्मा का जहां मिलन हुआ उसी को जीवन कहा जाता है, उसी को ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ये शरीर की वास्तविकता आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि शरीर की वास्तविकता क्या है। शरीर की वास्तविकता है पांच तत्व, राइट? और इसीलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही पांच तत्वों को डिमांड करता है। ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। प्रकाश चाहिए, पांचों तत्व चाहिए। अगर एक तत्व भी मिसिंग हो तो क्या होगा? बेचैनी होगी, क्योंकि यही शरीर की वास्तविकता है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो गया कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं, एक्सेस नहीं पीते, कल के लिए चलेगा। पांचों तत्व ये शरीर की वास्तविकता है, लेकिन इस शरीर में जो चेतन शक्ति आत्मा है, आत्मा की वास्तविकता क्या है? Who am I? वो मेरी वास्तविकता क्या है? है? या सोचते हैं आत्मा निर्लेप है, उसकी क्या वास्तविकता होगी? इट्स एन इटर्नल एंटिटी, दैट्स इट, अ कॉन्शियंट एंटिटी, एक चैतन्य शक्ति है बस। लेकिन उसकी चैतन्यता का की अभिव्यक्ति क्या है? आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति क्या है? क्या कहेंगे? शरीर पांच तत्व को डिमांड करता है जीने के लिए। शरीर में आत्मा जीवन जीने के लिए कुछ डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है? शरीर को पांच तत्व चाहिए, आत्मा को जीने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, हैप्पीनेस चाहिए। और भी कुछ चाहिए? या हैप्पीनेस मिलेगा बस हो गया? पीस चाहिए। और भी कुछ चाहिए? लव चाहिए। और भी? जीवन जीने के लिए आत्मा को सात बातें चाहिए, शरीर को सिर्फ पांच चाहिए, आत्मा को सात बातें चाहिए। कौन सी सात बातें चाहिए आत्मा को? आत्मा को सात गुण चाहिए। और वो सात गुण कौन से हैं जो आत्मा को चाहिए जीवन जीने के लिए? जो कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, भाषा का हो, सबको चाहिए। और वो क्या चाहिए? तो सात गुण में है। सबसे पहला गुण है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम। क्यों चाहिए हमें स्पिरिचुअल विजडम? क्यों चाहिए? क्योंकि मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है, द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ इज ईगो, कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, अहंकार सबसे बड़ा अज्ञान है, क्रोध सबसे बड़ा अज्ञान है। कोई बात नहीं जानते हैं तो गुस्सा आता है, जैसे ही कोई समझा देता अरे भाई ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, तो कहते पहले बताना चाहिए ना, इतना गुस्सा कर दिया मैंने उसके ऊपर, तो गुस्सा क्यों आया? अज्ञान। जब किसी बात की अज्ञानता है तब गुस्सा आता है। तो ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, एंगर इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, और ये इग्नोरेंस हमारे संबंधों को कितना खराब कर रहा है, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। स्पिरिचुअल नॉलेज ये क्यों जीवन में आवश्यक है? क्योंकि यही स्पिरिचुअल विजडम उस ईगो को, उस अज्ञान को न्यूट्रलाइज कर देता है। और जब ईगो न्यूट्रलाइज हो जाए, एंगर न्यूट्रलाइज हो जाए, वी डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो संबंध बिगड़ने के बदले बनने लगते हैं। इसीलिए ज्ञान चाहिए। तभी बचपन से हमें यही प्रार्थना सिखाई गई, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। क्यों चाहिए ज्ञान? क्योंकि यही तो अज्ञान को निष्क्रिय करेगा, इसीलिए ज्ञान चाहिए। उसके साथ साथ दूसरी वैल्यू है प्यूरिटी, जो आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो कितना प्योर एंड इनोसेंट होता है, प्योर है ना, कितना प्योर एकदम, ये उसकी रियल आइडेंटिटी है। हम सबकी ओरिजिनल आइडेंटिटी कौन सी है? वही प्योर इनोसेंस। लेकिन जीवन में जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम अपनी वास्तविकता से दूर जाते रहे, इसलिए आज जीवन में बेचैनी है, फ्रस्ट्रेशन इन लाइफ। जैसे शरीर को एक तत्व न मिले तो सफोकेट होने लगते हैं, आत्मा को ये सात गुणों में से एक गुण कम हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन लाइफ में क्रिएट होता है। इसलिए आजकल इतना फ्रस्ट्रेशन है संबंधों में, क्योंकि प्योर फीलिंग्स नहीं है, प्योर विचार नहीं है, पवित्र व्यवहार नहीं है, इतना मैन्युपुलेशन हो रहा है संबंधों में, व्यवहार में, कर्म में, इतना मैन्युपुलेशन हो रहा है कि आज लोग परिवार में ही सफोकेट हो रहा है, अंदर से घुटन महसूस कर रहा है परिवार के अंदर, क्योंकि प्योर फीलिंग्स नहीं है। इसीलिए इतना स्वार्थ ने उसकी जगह को ले लिया है। जहां ये दोनों है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जिसने ईगो को न्यूट्रलाइज कर दिया, प्योर फीलिंग्स डेवलप होने लग गई, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। आज हरेक को प्यार चाहिए, बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी कोई प्यार से व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्गों को सारा जीवन बहुत प्यार मिला, अब बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा। प्यार चाहिए हरेक को, क्योंकि यही तो हमारी वास्तविकता है। हर धर्म इसीलिए तो प्रेम का संदेश दे रहा है, और इसीलिए तो कईयों ने कह दिया ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, लेकिन ये ढाई अक्षर भी नहीं पढ़ पाए, प्रेम ही नहीं पढ़ पाए जीवन के अंदर। जहां ये तीनों है वहां मेंटली व्यक्ति रिलैक्स, जहां अहंकार हो, इम्प्यूरिटी या मैनिपुलेशंस हो, नफरत हो, वहां कभी शांति होगी? कभी नहीं। आजकल तो पैराडॉक्स देखो कि आजकल की दुनिया के अंदर किसी को आप स्ट्रेस में देख रहे हो और पूछो भाई क्या बात है, क्यों स्ट्रेस्ड है, तो क्या कहते हैं, ये इतना प्यार से बोल रहा है ना, यही तो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अरे भाई प्यार से ही बोल रहा है, फिर स्ट्रेस क्यों होना चाहिए? तो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, प्योर फीलिंग्स है नहीं, उसके बाद अगर प्यार दिखा रहा है तो प्यार नहीं है, जरूर कोई मतलब है। अब कौन सा मतलब है इसलिए स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, शांति नहीं है। प्रेम से बात करते तो भी शांति खत्म हो जाती है। और जहां ये चारों है वहां जीवन में सच्चा सुख है। नहीं तो आज सारे भौतिक पदार्थ होने के बावजूद भी सुख नहीं है, सुख सुविधा के साधन होने के बाद भी सुख नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोए हैं लेकिन रात को नींद नहीं है, एसी में बैठे हैं लेकिन पसीना छूट रहा है। ये तो आज की लाइफ हो गई है। और हर इंसान सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। भगवान के पास भी जाकर के यही कहेगा, दुख हरता सुख करता सुख करिए, है ना, सुख चाहते। और जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो खुशी भी नहीं रही है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी व्यक्ति को लाफिंग क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है। घर में वो हंस नहीं पाता है। घर में अगर हंसना शुरू किया किसी बात को लेकर के तो क्या कहेंगे लोग, घर वाले ही, आर यू नॉर्मल, क्या हो गया है। मतलब हंसना भी एबनॉर्मलिटी आज के भाषा में आ गया है। आर यू नॉर्मल, क्यों हंस रहे हो। या कहेंगे आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है। मतलब खुश नहीं होना चाहिए ऐसा, आज बड़े खुश हो रहे हैं, मतलब रोज खुश नहीं है, आज बड़े खुश कैसे लग रहे हैं आप, आज कैसे खुश हो रहे हैं। मतलब कितनी हमारी लाइफ कैसी हो गई है कि अगर एक दिन हमने गलती से स्माइल भी कर लिया या खुश हो गए, हम किसी बात को लेकर प्रसन्न दिखने लगे तो लोग तुरंत नोट करके पूछते हैं, क्या बात है आज क्यों इतना खुश हो रहे हो, है ना, कैसा पैराडॉक्स है ये भी। और जहां ये छह बातें हैं वहां आत्मशक्ति विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस भी खत्म क्यों हो रहा है, क्योंकि ये छह गुण नहीं है, छह शक्ति है। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ प्यूरिटी, पावर ऑफ लव, पावर ऑफ पीस, पावर ऑफ हैप्पीनेस, ये सब पावर्स है। और जब ये पावर्स है तो आत्मा शक्तिशाली महसूस करती है, एम्पावर्ड महसूस करती है, सशक्त महसूस करती है। लेकिन ये पावर्स जहां खत्म हो गए जीवन में, या दूसरे शब्द में कहे तो यही आत्मा की बैटरी है, लेकिन आज के युग में ये बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज है। इसलिए तरस रहे हैं कहीं से शांति मिल जाए, दो दिन भी शांति में गुजर जाए तो बड़ा भाग्य समझते हैं, दो दिन अगर खुशी से गुजर जाए तो बड़ा भाग्य समझते हैं। भाई दो दिन हो गए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, कोई समस्या नहीं आई, कोई बात नहीं हुई, कोई टेंशन नहीं आया, कोई ऐसा केस नहीं आया कॉम्प्लिकेशन वाला, बहुत अच्छा रहा, खुश रहे, हल्के रहे, खुशी में रहे, हाँ उदास होना नहीं पड़ा किसी बात को लेकर के, तरस रहे हैं आजकल वो दिन के लिए। तो ये आत्मा की वास्तविकता है, लेकिन इस वास्तविकता से हम धीरे धीरे बहुत दूर चले गए। और जब इतना दूर चले गए तो जीवन की क्वालिटी क्या हो गई, ये सात गुणों के बदले सात अवगुण आ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत। ये सात अवगुण के कारण आज जीवन की क्वालिटी क्या हो गई है। तो आत्मा की वास्तविकता, तो मेडिटेशन माना क्या, मेडिटेशन माना कमिंग बैक टू द रियल सेल्फ, अपनी वास्तविकता के तरफ आने की एक यात्रा है। और वो वास्तविकता के तरफ जो आने की यात्रा है, कई बार लोग पूछते हैं हमें, लेकिन सारी दुनिया में तो लोग लोगों के जीवन में ये वैल्यूज है नहीं। अगर हमने ये वैल्यूज से जीना शुरू किया तो क्या लोग हमारा एडवांटेज नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। और ही इन गुणों के कारण आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन समझेंगे। दुनिया में जितनी भी महान हस्तियां हो गई, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, महात्मा बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो, मदर टेरेसा हो, ब्रह्मा बाबा को देखा, आदरणीय दादी जी को देखा, इन सबके जीवन में क्या खास बात थी? इन सबके जीवन में यही सात गुण थे। स्वामी विवेकानंद को स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम, प्योरिटी, लव, पीस, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, विल पावर था। अच्छा, फायदा क्या होगा? आज बैटरी चार्ज करें हम, मेडिटेशन चार्जर है, और इस चार्जर में अगर हम अपनी बैटरी को ये सातों गुणों से चार्ज करें तो फायदा क्या? तीन बहुत बड़े फायदे। कौन से फायदे होंगे? सबसे पहला फायदा यही होगा कि हम सिचुएशन को बदल सकते हैं, परिस्थिति को बदल सकते हैं। कैसे? दूसरा फायदा यह होगा कि हम लोगों के एटीट्यूड्स को बदल सकते हैं, और तीसरा बहुत बड़ा फायदा है, हम वातावरण को बदल सकते हैं। कैसे? स्वामी विवेकानंद की बात मुझे याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका चले गए, जहां गीता का अपमान किया गया, सबसे नीचे गीता को रखा गया, भगवत गीता को, बाकी सब शास्त्र ऊपर रखे, टॉप पर बाइबल को रखा, भरी सभा में हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था तो क्या करता था? कैन यू इमेजिन क्या करता था वो? हाँ, कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला वहां होता था जिनके पास ये वैल्यूज न हो, वो क्या करता था? हाँ, फाइट करता था, झगड़ा करता था, गुस्सा करता था, गालियां देता था, तोड़फोड़ आरंभ कर देता था, और दुनिया के हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन शायद यही बन जाती थी, गीता का अपमान, गीता का अपमान। और उसका इम्पैक्ट भारत में क्या होता था? शायद उसको पॉलिटिकल इश्यू बना करके कितने इनोसेंट लोग मारे जाते थे, राइट? ये डिस्चार्ज बैटरी का कमाल है। परंतु स्वामी विवेकानंद डिस्चार्ज बैटरी नहीं थे, चार्ज बैटरी थे। उन्होंने क्या किया? मुस्कुराए और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं? लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं चल रहा है कि हमने सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे शास्त्र गिर गए, कहा आपने तो गीता को फाउंडेशन बना दिया, अगर गीता न हो तो दुनिया का कोई धर्म, कोई शास्त्र टिक नहीं सकता है। सारी सिचुएशन चेंज हो गई। कहां वो डिस्चार्ज बैटरी वाला परिस्थिति का शिकार बनता है, दूसरों को भी बनाता है, लेकिन चार्ज बैटरी वाला परिस्थिति को मास्टर कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। आप लोग जीवन में क्या चाहते हैं? परिस्थिति के शिकार बनना चाहते हैं या परिस्थिति को मास्टर कर लेना चाहते हैं? जब बैटरी चार्ज करो तो सबसे बड़ा फायदा यह है। तो बैटरी चार्ज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जब उसने ये कहा, लोग इतने इंप्रेस्ड हो गए, लोग उसके पीछे पीछे चलने लग पड़े, ये कौन व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है? लोगों के एटीट्यूड्स बदल गए स्वामी विवेकानंद के प्रति, भारत के प्रति, गीता के प्रति। जितनी भाषाओं में गीता को ट्रांसलेशन मिला, आज दुनिया में इतनी भाषाओं में किसी पुस्तक को ट्रांसलेशन नहीं मिला है। लोगों ने गीता को समझना चाहा कि ये व्यक्ति को गुस्सा ना आए, ये रिएक्ट ना करे। तो ऐसी क्या खास बात है गीता के अंदर जिसको उसने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है जिस कारण उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। लोगों की मनोवृत्ति बदल गई, उनके पीछे पीछे चलने लग पड़े, उनके शिष्य बनते गए, सारा वातावरण बदल गया। कहां तो लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। एक बार वो बस स्टॉप पर खड़े थे, एक कपल आया और पत्नी ने कहा अपने पति से कि भारत के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, इनको कपड़े पहनने की भी सभ्यता नहीं है। स्वामी विवेकानंद तुरंत मुड़े और कहा कि शायद आपके देश में कपड़े के या पहनने से व्यक्ति की सभ्यता का पता चलता है, हमारे देश में चरित्र से व्यक्ति की सभ्यता का पता चलता है। वो दोनों उसके शिष्य बन गए, उसके पीछे पीछे चलने लगे। भावार्थ ये कि स्पिरिचुअलिटी हमें ये नहीं सिखाती है कि कोई अगर कुछ कह दे तो हम चुप रहे, हम कोई रिस्पॉन्ड ही न करें, लेकिन रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका बताता है जिससे आप परिस्थिति को भी मास्टर कर लो, उनकी मनोवृत्ति को भी चेंज करो और वातावरण को भी बदल दो। ये स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए धर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग चीज है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब धर्म नहीं है, धर्म अलग चीज है जो कहीं हमें रिचुअल्स तक रखता है, प्रैक्टिसेस तक रखता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज अ साइंस। इसलिए कहा जाता है वेयर साइंस एंड्स फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल साइंस बिगिन्स। और फिर उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो लॉज है, उसको समझते हुए उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना लाइफ में, तब जीवन के अंदर जो चाहते हैं परिवर्तन, जिस तरह का परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन को अपने जीवन में हासिल कर सकते। तो मेडिटेशन माना क्या? गोइंग बैक टू द रियल सेल्फ, रियल आइडेंटिटी, जो ये सातों गुणों की है, और उसमें अपनी कॉन्शियसनेस को स्टेबलाइज करना। और फिर जैसे जैसे उस अनुसार विचार चलते जाएंगे, तो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। एज यू थिंक सो यू बिकम, यू स्टार्ट बिकमिंग दैट। तो यही मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है। अभी थोड़ी देर के लिए हम सभी मेडिटेशन में बैठेंगे, इस कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे और उसको महसूस करेंगे। खाली सोचना नहीं है, विचार में आपको देती जाऊंगी, सोचना नहीं है, लेकिन सोचने के साथ साथ उस महसूस करते जाएं, उसको फील करते जाएं और उसको एक्सपीरियंस करते जाएं। नो थाई सेल्फ, रियलाइज थाई सेल्फ। हमने जान लिया, अभी रियलाइज करना है इन गुणों को। लेट द एनर्जी जस्ट फ्लो इनटू योरसेल्फ। तो कुछ क्षणों के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं और स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखो, एक चैतन्य शक्ति के रूप में, ज्योति पुंज के रूप में, मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध और पवित्र हूं। यही मेरी वास्तविकता है। पवित्रता के वाइब्रेशंस को जनरेट करें, महसूस करें। यही पवित्रता मुझ आत्मा का असली स्वरूप है, ये डिवाइन ग्लो है। चारों ओर मेरा असली स्वरूप शांति है। शांति के प्रकंपनों को मैं अपने चारों ओर महसूस कर रही हूं। शांति में प्रसन्नता समाई हुई है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परमानंद है। यही मेरी वास्तविकता है। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, शक्ति स्वरूप। ओम शांति।